स्कूल से चुकता है, माता पिता जैसे तुमको जन्म दिया और पालन पोषण किया, इस प्रकार से प्रजा उत्पन्न करके उनका पालन पोषण और उनको सब प्रकार से योग्य बना करके तब जाओ। और दूसरा होता है क्या, ये स्थूल से, और सूक्ष्म रूप में क्या हुआ,
भगवान का भजन करें उन लोगों का युद्ध,
जैसे तुमने भगवान का भजन भजन करना सीखा उसी प्रकार से तुम्हारे भजन के प्रभाव से उनका उद्धार पूर्वजों का, इस तरह से ये। और क्या, राजाओं का उपकार तो उसी में आ गया। इसी तरह से सब ऋणों से यदि कोई भगवान का भजन करता है तो इन सब ऋणों की कोई आवश्यकता नहीं होती, वो अपने आप भगवान चुका लेते हैं। कैसे चुका लेते हैं, जैसे मैंने किसी को 1000 रुपया ऋण दिया, 1000 एक उदाहरण के द्वारा, हमारे मुनि महाराज एक थे, वो गृहस्थ का नाम था सनातन महाराज, सनातन
दशाधिकारी,
दशाधिकारी उनके यहाँ कपड़े का कारखाना था, उसमें बहुत से नौकर लोग थे जो काम करते थे, कपड़े बुनते थे, उनमें एक थे उनका नाम था पूर्णानंद, वो प्रभुपाद जी के शिष्य थे, उनके यहाँ कपड़े बुनते थे और उनको ये महीना देते थे। तो इन्होंने, इनकी कुछ स्थिति खराब थी इसलिए उनसे 5000 रुपया ले लिया और वो काम कर रहे थे, धीरे धीरे चुकाएंगे, तो वो 5000 रुपया देने में चुकने में कम से कम कभी 5-7 वर्ष लग जाए। एक बार गुरु जी हम लोगों के साथ में ही सनातन प्रभु जी के घर में, जब घर में गए तो हरिकथा 4-5 दिन हुई, तो उन्होंने पूर्णानंद जो थे उन्हें कहा जी महाराज मेरी भजन करने की बड़ी इच्छा है, मैं भी इन लोगों के समान में ब्रह्मचारी जैसे भजन कर रहे हैं, मैं भी अब दशाधिकारी बनकर के आपकी सेवा करूँ, वान प्रसव अवलंबन करके मेरी स्त्री ने छोड़कर भजन कर। उन्होंने कहा चलो अपनी स्त्री से पूछ लो, हमारी स्त्री राजी है, तब फिर क्यों नहीं चलते, मैंने 5000 रुपया इनका ले लिया है और जब तक नहीं चुकता तब तक मैं इसके बंधन में हूँ, इसने मैं कैसे। गुरु जी ने उनको बुलाया, सनातन प्रभु, सनातन प्रभु आपके पास में आप क्या ये ऋणी है 5000 रुपया आपसे लिया है आपका, तो ये तो भजन करना चाहते हैं और 5000 रुपया मैं आपको इसके बदले में दे दूंगा। अरे महाराज ये क्या करें, मैं तो आपका 40 रुपये का ऋणी हूँ, वो कैसे, आपने हमको परमार्थ में लाया, मैं जन्म जन्म का आपका ऋणी हूँ, तो ये 5000 रुपया हमारा यदि इसमें चुक जाता है तो मैं अपने को धन्य समझूंगा, इसलिए मैं वो 5000 रुपया हम आपसे पा गया, आप इनको ले जाइए। बस एकदम साथ ही साथ आए और 1-2 वर्ष में फिर उन्होंने संन्यास ले लिया और संन्यास तक रख करके
पूर्णानंद
फिर उनका नाम हो गया, क्या नाम हुआ, परमार्थी महाराज, परमार्थी महाराज नाम। भगवान के यहाँ हम सभी ऋणी हैं ना, अब यदि हम भगवान का भजन कर गए दूसरे क्या ऋणी हैं, तो वो भी तो भगवान के यहाँ ऋणी है, इसलिए वो सब चुक जाता है। ये इतना ज्ञान भी होना बिना साधु संतों के समझे नहीं, इसलिए कहते हैं ये भगवान भी ऋणी हैं, किनके, केवल मात्र गोपियों के, सब गोपियों के ही ऋणी हैं, किंतु और किसी के ऋणी नहीं है, क्यों, इसीलिए कहते हैं ससाधकृत्यम, आप लोग साधु हैं, आपके अंदर में कोई वासना कामना नहीं है, सब समय मेरा सुख चाहती है, ये आपका साधु कृत्य है, आप परम उदार हैं, आप उदारता से ही हमारे इस ऋण से शुरू हैं, मैं जानता हूं आप हमारे दोषों को, हमारे त्रुटियों को और कमियों को जो मैं पूरा नहीं कर सकता, इसके लिए आप सब समय हमको छूट देते, अन्यथा मैं कभी भी ऋण नहीं हो सकता, यदि आप लोग ऋण कर देंगे तभी मैं ऋण नहीं लूँ, ये तो और भी मैं दब जाऊंगा। एक आदमी कोई ऐसा काम किया और किसी ने उसको क्षमा कर दिया, तो क्षमा करने वाले का कितना बड़ा भारी ऋण उस पर और चढ़ जाता है। उसी प्रकार से गोपियों कि हाँ, जब कृष्ण ने ये सोचा, ओहो मैं इनका ऋणी हूँ, और कह रहे हैं माँ भजन दुर्जर गृह श्रृंखला, हमें भजन करने की जा माँ भजन, तुम लोगों ने जो हमारे प्रति अपने दुर्जर गृह श्रृंखलाओं को अभी जो पीछे बतलाया, उन श्रृंखलाओं को तोड़ फोड़ कर मर्यादा के समुद्र को भी लांघ कर संविष्य मैंने छेदन कर, संविष्य उसको छेदन कर, हमारे पास में जो आई प्रति जाति मैंने तुम लोगों का ये जो ऋण हमारे प्रति हुआ, उसका मैं ऋण कभी भी लाख देवताओं के जन्म को भी पा करके मैं कभी भी वो ऋण नहीं, कभी भी नहीं। गोपियां सुनी और एकदम तर्क हो गई, हम लोग तो ऐसी हो नहीं सकती, जैसे कि ये आज अपने मुख से ऐसा कहा मैं तुम्हारे कोटि जन्मों में ऋण नहीं चुका सकता, इतना होना सहज बात है किसी के लिए। अब हम लोग इनकी ऋण बन गई, इस वाक्य के द्वारा कृष्ण ने हमको खरीद लिया, इसलिए प्रति उनका ऋण हो गया।
कहा है कि ये तो कृष्ण ने ठगबाजी करके हम लोगों को बचाना चाहते हैं, तो क्या करें,
चलो पीछे से जब बुद्धि आई होगी तब। किंतु इस समय में गोपियां एकदम हर्ष हो गई और किस प्रकार से सोच, क्योंकि इसी के बाद में फिर रास आरंभ हो गया, इसी के बाद महाराज ने, तो अभी तक रास नहीं हुआ था, फिर गोपियां प्रसन्न हो गई, सोची जे भाई इतना होना हम लोगों के लिए भी सहज नहीं है, इतना नीचे पहुंच गया, ये कृष्ण में इतनी उदारता है, आज उस उदारता के कारण हम पुनः उत्तीर्ण बन गए, इसलिए फिर नहीं तो कृष्ण किसी प्रकार से समझा नहीं सकते थे गोपियों को। ये उन्होंने सबसे बड़ा जो अस्त्र था क्या, किसी के वशीभूत होकर के दीनता पूर्वक, इससे बढ़कर के कोई भी चीज किसी को शासन के द्वारा आप नहीं झुका सकते, है नहीं झुकेगा तो हम तुम्हें पीट डाले, नहीं किसी के द्वारा कंट्रोल नहीं किया। यहाँ पर कृष्ण ने समझाया, ये बतलाया हम सब प्रकार से अपार, तुम्हारा ऋण काम सबसे नहीं, मैं बहुत दीन ही सबसे छोटा, बस गोपियां बस किसी को यही हुई है, इसलिए कृष्ण विदग्ध है। विदग्ध मैंने क्या,
वाक चतुर,
तो वाक चतुर नहीं सब विषय में रसी के, उन्होंने देखा भाई राष्ट्र होगा नहीं, इसीलिए उन्होंने आगे बतलाया, यद्यपि सौंदर्य कृष्ण माधुर्य रे धूर्य, कृष्ण माधुर्य रे धूर्य, ब्रजदेवी संगीता बड़े मधुर्य, इसके बाद में धीरे धीरे रास आरंभ हुआ मंडलाकार में, कृष्ण कैसे हुए एक गोपी के बीच में एक दीप, एक तो पहले राधा जी के साथ में एक रहे, और सब गोपियों के पास भी वो दिखाई पड़े, दो रूप, एक राधा के रूप में राधा जी के पास बीच में, राधा जी बीच में थी और सब गोपियां मंडलाकार थी, तो बीच में उनके साथ और सब मंडलाकार में गोपियों के साथ में एक एक गोपी मध्य दयोर मध्य, दयोर दयोर मध्य मैंने क्या, कृष्ण के लिए करें द्वयोर मध्य, दूटा गोपी ना द्वयोर द्वयोर माने दो बार द्वयोर,
दो गोपी के बीच में कृष्ण और दो कृष्ण के बीच में गोपी,
दो गोपी एक तरफ में, दो गोपी एक तरफ में, बीच में कृष्ण, तब तो द्वयोर द्वयोर होगा, कैसे देखो दो गोपी है, इधर में कृष्ण है उधर में कृष्ण, उधर से वाली गोपी इधर वाली गोपी, और फिर इधर वाली गोपी और उधर बीच में इधर कृष्ण, तो दो हुआ इधर और फिर उधर में, दो उधर नहीं समझा,
एक कृष्ण के दो गोपी हो गया,
दो तब से गोपी को पकड़े हैं कृष्ण ना, और उधर वाले कृष्ण क्या किए हैं, दो को उधर से पकड़े हैं, तो बीच में दो हुआ नहीं, समझो दो हुआ। अनेक कृष्ण एक इधर से पकड़ा, इधर से फिर उसको भी उधर से पकड़ा, तो एक गोपी को दो बार कृष्ण पकड़ा है, दोनों हाथ उधर वाले हाथ से उधर हाथ, कौन सा ठीक है? नहीं आया समझ में?
एक गोपी के अंदर कृष्ण घर से दूर गए, एक गोपी के दूसरे कृष्ण
मैंने यही तुम लोगों से पूछते हैं कौन सा ठीक है, एक एक गोपी के बीच में एक एक कृष्ण है या दो दो गोपी के बीच में एक एक कृष्ण है? अरे ब्रह्मा इस चीज को निर्णय नहीं कर सके, आ रहा हूँ हाँ, आप हम लोग बैठे
ना, कोई रूप समझ नहीं ना, एक बार ऐसे नृत्य किया कि 300 करोड़ गोपियाँ हैं एक साथ में हैं, कि ऐसे नृत्य कला दिखा है कि 300 करोड़ गोपियों के बीच में कैसे चक्कर काट रहे हैं समझ में नहीं आ रहा।
यही तो भगवान का ऐश्वर्य है।
और फिर दो 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 बीच में ये
नहीं लिखते, द्वय लिख देते तब तो ठीक हो जाता ये दो गोपियों के बीच में कृष्ण, किंतु द्वयो द्वयो दो दो गोपी और एक कृष्ण।
फिर इसके बाद में कुंजलीला में एक एक गोपी के साथ एक एक कृष्ण दिखाया और पृथक पृथक कुंजलीला
सब दोनों भी हो सकता है
अलग से पीछे।
हम लोगों के आचार्यों ने कहा है जी गोस्वामी ने
कि ये दोनों में ठीक नहीं देखा
है, ऐसे
क्षिप्रता
या ऐसे ढंग से उन्होंने कला कौशल से किया है जो ठीक ऐसे ही मालूम है, इसलिए दोनों ही ठीक। अब ये कह रहे हैं तत्राति सुशुभे ताभिर भगवान देवकी सुत मध्य मणिनांग हैमानांग महामरकतो तत्राति सुशुभे। कौन सुशोभित किया? तत्राति माने कृष्ण बड़े सुंदर हैं। अभी कह रहे हैं यद्यपि सौंदर्य कृष्ण माधुर्य रघुर्य, कृष्ण का जो माधुर्य है उसका धुरी क्या है? धुरी किसको कहते हैं? चक्का किस पर चीज पर घूमता है? पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है ना? कोई चीज के लिए धुरी नहीं रहेगी तो चक्का इधर उधर चला जाएगा, इधर धुरी होनी चाहिए। तो धुरी क्या है यहाँ? कृष्ण माधुर्य का उनका सौंदर्य ही। और सौंदर्य किसको कहते हैं? 16 चीजों से युक्त होकर के तब ये सौंदर्य बनता है। कृष्ण का धीर ललित्व और वो सब जो गुण हैं उनकी कलाएं हैं, उनका विदग्धपन है, उनके वो सब उज्ज्वल
गुण
है, ये सब यदि गुण न रहे तो ये सौंदर्य भी नहीं होगा। उसमें आभरण भी है, आभूषण भी है, मंडन भी है, ये सब अलग अलग सब बतलाए गए, तो ये सब मिलकर के सौंदर्य है। यह सौंदर्य ही कृष्ण का सबको आकर्षण करने वाला है और यही माधुर कृष्ण की समस्त माधुरी माओं का पूरी है। इसी तरह से आकर्षण करते हैं और इनका यह रूप समस्त रसों में उसके अनुकूल ही ये होता है, एक ही रूप में नहीं विभिन्न रूपों में, पांच रूपों में पांचों रस प्रकाशित हैं। कृष्ण एक जैसा उनका होगा आश्रय ऐसा ही उनका होगा। तत्रापि कृष्ण अत्यंत सुंदर हैं किंतु ब्रज देवी संगीता बड़े माधुर्य, कृष्ण का माधुर्य और सौंदर्य और वैदग्ध नित्य की कुशलता, कृष्ण की संपूर्ण भगवत्ता का सा ये सब कब बढ़ता है?
गोपियों के साथ
शांत रस में स्थिर रहता है, दास रस में कुछ बढ़ता है, सख रस में और बढ़ता है, वात्सल्य में कुछ और बढ़ जाता है और गोपियों के संग में पूर्ण रूप में बढ़ जाता है। अभी कुछ बढ़ने का अवकाश है, अभी तक नहीं बतलाया, बतलाएंगे पीछे, इसलिए गोपियों के साथ में परिपूर्ण रूप से बढ़ जाता है। इसीलिए कह रहे हैं तत्रापि, तत्रापि मैंने क्या? तत्रापि अति सुशुभ है, तत्र यानी कृष्ण तो अत्यंत सुंदर है, परम मधुर है, उनमें समस्त गुण है उसके नायक के, तो भी गोपियों के साथ में आज वही कृष्ण इस राष्ट्रस्थली में अति सुशुभ अत्यंत सुंदर रूप में मनमत रूप में यहाँ पर प्रतिभात हुए। क्यों? वो भगवान है ना, भगवान अब बढ़ नहीं सकते, वो परिपूर्ण है, किंतु यहाँ पर और भी बढ़ गए गोपियों के साथ में। तब ये कैसे बढ़ सकते हैं, बढ़ेंगे कैसे, कृष्ण तो वही रहेंगे जो है। उसके लिए कहते हैं कि मध्य मणिनां हयमानां, यहाँ पर देवकी सूत कहा, देवकी सूत माने यशोदा का दूसरा नाम है
देवकी,
देवकी इसलिए। तो मध्य मणिनां, मध्य में मणिया बहुवचन मणिनां,
मणिनां मणिनां
ना, और हयमानां माने ये तुलना दिया, स्वर्ण की मणियां माने पीली पीली खूब सुंदर, ये बहुवचन में। और महामरकतः, ये महामरकत कौन है, तो एक वचन हुआ ना, और वो सब क्या है,
बहुवचन,
एक बहुवचन, दुवचन नहीं बहुवचन। तो ये एक ही कृष्ण वैसे ही सुशुभ है, ऐसे ही प्रकाशित हुए, जैसे बहुत सी मणियों में एक ही मरकत मणि, मरकत मणि किसको कहते हैं, एक कहते हैं नीलमणि, नीलमणि माने सोने से भी अधिक कीमती होती है, उसका रंग कुछ नीला होता है। और एक होता है इंद्र नीलमणि, कृष्ण है इंद्र नीलमणि, इंद्र माने यहाँ सबसे श्रेष्ठ, मणियों में भी सबसे श्रेष्ठ जो है, जो जितनी भी मिल सकती है मणियाँ उन सब मणियों में है नील ना, वो है इंद्रनील मणि। और इंद्रनील मणि से भी श्रेष्ठ वही इंद्रनील मणि यदि बहुत से सोने सुंदर सुंदर के पास में रख दी जाए तो उनकी प्रभाव उस पर चमकती है, किस पर, और इंद्रनील मणि का जो नीलापन है वो कुछ उनके प्रभाव से पीठ पर पड़ जाने से कुछ छिप सी जाती है, उस समय शोभा उसकी और लाख गुना बढ़ जाती है, तब उसको कहते हैं मरकत। जैसे एक सुंदर आदमी है किंतु अत्यंत सबसे सुंदरी लड़कियां हैं, बहुत सुंदर, उनके साथ में खड़ा जा हो जाए तो वो भी सुंदर दिख पड़ेगा, सुंदर के साथ में सुंदर दिख पड़ेगा। अब कृष्ण है तो नील, इंद्र नील है, और उसकी गोपियों की छाया हेमानंद, हेम के समान वो गोपियां हैं, वो हेम मणि हैं, उनकी आभा इस इंद्र नील मणि पर पड़ी, उसका नील का भाव कुछ कम गया और वो छाया उसमें प्रभा कुछ रम गई और वो अत्यंत उज्ज्वल हो
गया,
इसलिए उसको कहते हैं महामरकत। वही कृष्ण है, यदि वो रहते दास्यों के यहाँ सखियों के यहाँ तो वही इंद्र नील मणि रहते, उनकी शोभा इतनी नहीं होती,
मरकत नहीं।
आज गोपियों की वजह से उनके इस आभा पड़ने से
मरकत हो गई।
दूसरी बात, कृष्ण विदग्ध हैं, चतुर हैं, ये बात ठीक है, सखाओं में भी बड़ी विदग्धता होती है, किंतु सखा लोग इतने विदग्ध नहीं होंगे जितना सखियां हैं, इसलिए सखियों के साथ में विदग्ध होने के लिए कृष्ण को टॉप मोस्ट होना पड़ेगा, इसलिए उनकी सब चीजें निखर आती हैं, तब वो अत्यंत अधिक विदग्ध हो। और अधिकांश समय में वो जानबूझ करके कहो या सचमुच में वो पराजित हो जाते हैं उनसे, उनको से। इसलिए सुंदरता में भी यहाँ पर जो उनके छवि के द्वारा आक्रांत हो गए हैं, ये कृष्ण का जो रूप और सौंदर्य है ये सबसे सुंदर है, गोपियों के द्वारा भावाप्राप्त होने के कारण। इसलिए कृष्ण एक हैं। तत्रात बीच में राधा जी ने, राधा जी के इतनी क्षिप्र गति से चल रहे हैं। साधारण लोगों ने ये प्रकाश किया है ये एक एक गोपी के बीच में एक एक कृष्ण, और किसी ने कहा ये दो दो गोपियों के बीच में कृष्ण है, दोनों ही ठीक, क्योंकि दो गोपियों को मैं दो को आलिंगन किया ना, उधर वाले कृष्ण है वो भी दो दो गोपियों का आलिंगन किया। आखिर ऐसा हुआ कि एक गोपी को दोनों तरफ, इधर से भी कृष्ण हाथ डाल रहे हैं उधर से भी हाथ डाल रहे हैं, तो गड़बड़ हो जाएगा। दोनों प्रकार से उन्होंने आश्वर्य कर एक ही साथ में इतनी क्षिप्र गति से चल रहे हैं कि बीच में भी दिखाई पड़ रहे हैं, साथ साथ में इनके पास में भी, जैसे एक
औलाद चक्रवर्त
एक अग्नि जला दिया आग कुछ लकड़ी, और उसका एक हाथ में रख करके और ऐसे जोर से घुमाया तो वो कैसा दिखता है?
आग का चक्का जैसा,
वो आग का चक्का जैसा, किंतु आग का चक्का था नहीं, वो तो एक लकड़ी में आग है, किंतु इतनी जोर से घुमा दिया ना मालूम होता है कि ये चक्का, और यदि घुमाना करके ऐसे ऐसे कर दिया ना तो उतने उतने गोल तो आग तो एक ही जगह स्थिर है, किंतु ऐसे ऐसे कृष्ण एक ही होकर के भी सबके पास में क्षिप्र गति से। यदि ऐसा नहीं कहेंगे तो कृष्ण का काय व्यूह मानना पड़ जाएगा, तो कृष्ण का तो नारद भी ऐसा कर सकते हैं, तो भगवान की विशेषता क्या हुई? इसलिए जी ने
इतना
कृष्ण की कला है वही है और कह दिया गया। ऐसा लोगों को मालूम पड़ा कि कृष्ण उतने ही हो गए जितनी गोपियां थी, अब उसको भी ऐसे ले राधा जी के पास। अब कहते हैं प्रभु कहे यही साध्यावधि सुनिश्चय, किस लिए कहा? यहां पर गोपी प्रेम की बात चल रही है, गोपी प्रेम में चल रही है तो कृष्ण की बात क्यों लाई? क्यों लाई? लाने की जरूरत क्या है?
गोपी तो कृष्ण का प्रेम कर रही है, कृष्ण किसका प्रेम करेंगे?
यहां पर खूब जोर से हवा चल रही है, हमने कहा देखो भाई ये पेड़ कैसा हिल रहा है चारों तरफ, तो पेड़ के हिलने से हम अनुमान करते हैं जो हवा जोर से चल रही है कि कम चल रही है कि नहीं। हमने कहा ये पेड़ हिल रहा है तो हम पेड़ हिलने के लिए कह रहे हैं, यानी हमको ये बतलाना है ये हवा खूब जोर से चल रही है,
ये उनसे
उसके लिए हमने कह दिया जैसे भाई ये पेड़ खूब हिल रहा है, झोंके से इधर उधर हो रहा है, पेड़ इतनी जोर से हवा थी कि पेड़ टूट गया, तो और भी ये मालूम होता है खूब जोर से आंधी थी। उसी चीज से यदि जिनके प्रेम के तरंग में कृष्ण भी लुढ़क रहे हैं, वो इधर उधर बह रहे हैं, उनको भी कुल किनारा नहीं मिलता है, तो समझो जी वो प्रेम कृष्ण को था नहीं, कृष्ण को इतना करना पड़ा जो एक एक गोपी की इच्छा को पूर्ण करने के लिए एक एक गोपी के पास में जाना पड़ा। इसलिए गोपियों प्रत्येक गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम ऐसा है जो सब लोगों ने कृष्ण को भी वशीभूत कर दिया, इसलिए इनका प्रेम इतना उच्च कोटि का है जो कृष्ण को भी वशीभूत कर सकते हैं और जो कोई नहीं कर सकते। इसलिए यहां पर इस श्लोक में भी गोपियों के प्रेम को ही बतलाया, जिसका अंदर में जैसा प्रेम होता है कृष्ण के अंदर में भी उसके प्रति वैसा ही प्रेम होता है, किंतु कभी कभी कृष्ण का प्रेम
दब जाता है।
क्यों? यही कृष्ण की बड़ी बड़ा भारी गुण है, इसीलिए वो स्वयं अपने भक्तों से अपने को छोटा बना कर देता है। प्रभु कहे यही साध्यावधि सुनिश्चय, वो कृष्ण स्वयं ही कह रहे हैं। हाँ अब मैं समझा यही साध्यावधि, कृष्ण ही कह रहे हैं महाप्रभु से, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अब उसमें तो देखो एक चीज सीखना अलग है और टेस्ट करना अलग है ना? कुछ लोग हैं रसोई बनाना नहीं जानते, रसोई बनाने के बाद अरे भाई ये ठीक नहीं आ रही, अच्छा भाई इसमें क्या कमी है, तो वो बतला नहीं सकते कि क्या चीज की कमी है। थोड़ी चीज की कमी है वो थोड़ा सा चीज उसमें दे दिया जाए, नमक की कमी है थोड़ी सी, बस नमक उसमें थोड़ा सा दे दिया, बस एकदम टेस्ट उसमें। तो जो बनाने वाला वो नहीं जानता है, जो टेस्ट करने वाला वो तो टेस्ट कर रहा है, कृष्ण टेस्ट कर रहे हैं उस प्रेम का। वो नहीं जानते कि भाई ये कैसे इसमें टेस्ट आएगा, गोपियां उस चीज के आज महाप्रभु कहते हैं हाँ आज समझ गया असाध्य क्या हाँ मैं अब मैं निश्चित सुनिश्चित कृष्ण रूप में पूर्ण कर सकता। वो उन्होंने प्यार किया उन्होंने भी प्रेम किया, उन्होंने प्रेम किया उन्होंने प्रेम किया, सखाओं ने प्रेम किया इन्होंने भी प्रेम किया, मैया ने प्रेम किया इन्होंने प्रेम किया, उस समय में क्यों टेस्ट में लगे हैं
वो।
कभी कभी ये सब हमारे गोस्वामियों के ग्रंथों में ये सब का वर्णन है, किसी गोपी श्रीमती ये सब पूछ रही है तुमने कैसा आस्वादन, हमको पता ही नहीं, मैं गई हूँ उनसे मिली और बस मैं अपने को भूल गई। अच्छा तो ठीक है तुम दूसरे दिन शिक्षा करके आए, वो कहते हमको तो शिक्षा आती नहीं है, तुम जाना तुम बड़ी बुद्धिमती है तुम सीख करके आना और तब बतलाना। ऐसे ही कृपा करी कहो यदि आगे की छू हो, कहते हैं ये मैं समझा बहुत प्रसन्न हुआ समझ गया, किंतु आगे किसे कुछ थोड़ी थोड़ी दूर पर हो क्यों राय कहते हैं यार आगे पीछे कौन है नो जाओ जाने एक दिन नहीं जानी आछे त्रिभुवन, त्रिभुवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस चीज को पूछ सके, मैं नहीं जानता। आज उनको आश्चर्य है ऐसा भी व्यक्ति है जो कि ऐसा प्रश्न कर सकता है, सभी सभी प्रश्न नहीं करते, हम लोग तो हैं तो कोई प्रश्न ही करना नहीं जानते, आ करके बैठ जाते हैं और फिर चले जाते हैं, यहाँ की चीज यहीं पर छोड़ जाते हैं, दूसरे दिन आते हैं फिर वहाँ से आरंभ करते हैं, फिर जाते हैं तो सब छोड़ देते हैं, रात में चिंता भी है और कुछ भी आता है, जिसको आता है वो तो खुश हो जाता है। इसी का नाम अनुशीलन है, जो सुना उसको विचार किया अपनी चीज बना लिया तब तो ये ठीक, और नहीं तो सुन करके और छोड़ करके चले गए, या सुना और कोई भैंस के आगे बीन बजावे भैंस बैठ पर गुजारती, बीन बज रहा है बीन बाजा और भैंस बैठ करके बाजू मार रही, उसको कोई चिंता नहीं क्या बज रहा है क्या बज रहा है, सुर से बज रहा है कि ताऊ से बज रहा है, ऐसे ही सुनो समझो इसमें प्रवेश करो सबको सुनो आदि संसार नमो महापतंगाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यनाम्ने गौरवस्तुते कृष्ण करुणासिन्धो दीनवंशो गोपी प्रेम को सर्वशास्त्र बतला करके राय रामानंद जी ने ये बतलाया कृष्ण सुंदर है, कृष्ण रस विग्रह है, कृष्ण सब प्रकार से जुड़े हैं, किंतु उनकी सबकी अंतिम चरमावस्था गोपियों के संग में ही कृष्ण सुंदर है ठीक, क्योंकि ये सुंदरता की पराकाष्ठा होगी जबकि गोपियों के मध्य में वो रहेंगे, इसीलिए कल बताया था तत्प्राप्ति सीधे गोपियों के मंडल में ही सबसे अधिक सुंदर होगी। गोपियों के अतिरिक्त उनका मनमथत्व भाव कहीं नहीं प्रताप हो, वही तभी वो मनमत विशेष करके कृष्ण की, कृष्ण में चार गुण सबसे अधिक और भगवान की अपेक्षा रूप माधुरी, गुण माधुरी, लीला माधुरी, बेन माधुरी, ये चारों चीजें केवल गोपियों के ही साथ ही गोप रमणियों के साथ ही किशोरियों के साथ में ही ये सुनता है चार अपनी पराकाष्ठा। सब हम लोगों ने वर्णन किया और गोपियों ने भी उन्होंने बतलाया यह मध्य राधा प्रेम सात्व शिरोमणि दिए गए। यदि गोपियां न रहें तो कृष्ण की ये सब माधुरियां कभी भी प्रकाशित नहीं होंगी गोपियों के वजह से। उनमें भी राधा प्रेम कृष्ण के प्रति ये सब श्रेष्ठ, इसके लिए भी हम लोगों ने बताया, कुछ बताया था। अब राधा प्रेम के लिए बतला रहे हैं, गोपियों के प्रेम के संबंध में ना क्या स्वयं हृदय प्रसाद इत्यादि श्लोक में बताया। अब उसके लिए रामानंद जी उनको बतला रहे हैं पद्म पुराण का एक वाक्य लाकर तथा राधा प्रिया विष्णु तस्या कुंडम प्रियम तथा सर्पगे गोपेशु सेवैका विष्णु अत्यंत वल्लभा। विष्णु मैंने यहाँ पर कृष्ण, कृष्ण की अत्यंत वल्लभा श्रीमती राधी जाती है। राधिका जी जैसे कृष्ण को सर्वोत्तम रूप में तैयारी हुई उनका कुंड भी वैसे ही उनके लिए, जैसे राधा कुंड भी जब उनको इतना प्यारा है तो ये राधा कुंड और राधा जी स्वयं गुण एक ही अभिन्न थे, राधा कुंड की कृपा ही राधा जी की कृपा। विष्णु पुराण में ऐसा लिखा है और भी श्रीमद भागवत में उदाहरण लेकर के बतला रहे हैं। अनयाराधितो नूनं भगवान हरिदेश्वर जन्मो विहाय गोविंद ही तो जान अनयाराधितो नूनं भगवान हरिदेश्वर अनया माने हाथ दिखला करते थे अनया, ये जो गोपी है जो कृष्ण के साथ में जा रही है जिनके चरण का चिन्ह कृष्ण के चरणों के साथ में वो भगवान की कृष्ण की अत्यंत प्यारी है। उसने भगवान नारायण इत्यादि की उपासना ऐसे की है ये कृष्ण की अत्यंत प्रिय पुजारी बन गई जिससे कृष्ण उसको अपने साथ लेकर के कहीं अन्यत्र निर्जन स्थान में गए यहाँ पर था। सब गोपियों को ठोक करके इसको लेकर के यहाँ पर गए। ये तीसवें अध्याय का राष्ट्रपंच, राष्ट्रपंच से अध्याय में दूसरे दूसरे अध्याय इंग्लिश में पृष्ठभूमि का ये कृष्ण ने पूर्णिमा को वंशित बनी और सब गोपियां छोड़ करके आ गई कृष्ण के पास। इसके बाद में राष्ट्र प्रारंभ हुआ और राष्ट्र में कृष्ण उनके दो दो के बीच में वैर जय मत थे। दो दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण एक गोपी के रूप में नित्य इत्यादि और सबका सौभाग्य दिख रहा है। इस प्रकार कौशल से नित्य किया प्रत्येक गोपियां तो समझ गए कि हमारे साथ में ही है, नित्य कर रहे हैं। साथ साथ में ये भी देखा जैसे बीच में जैसे माला के बीच में एक क्या होती
है
लटका
लॉकेट
होता है ना बीच में होती है जैसे हार और हार में एक नीचे में एक पान के जैसा तो ऐसे ही रात हो रहा था उसके बीच में एक गोपी है राधा जी और चारों तरफ में और सब करोड़ों गोपी हैं।
तीन सौ करोड़
इसलिए दिया कि जैसे असंख्य उनकी गिनना नहीं हो सकती इसलिए वो 300 बीच में राधा और कृष्ण हैं और चारों तरफ में भी कृष्ण उन गोपियों के साथ में है। उस समय एवं भक्तवत तो उस समय में कृष्ण राधा जी के साथ में तो नित्य कर ही रहे हैं गोपियों के साथ में नित्य कर रहे हैं और उनके पसीने हुए तो अपने पीताम्बर से उनको भी पोंछ दिया उनको भी पोंछ और जो विलास इत्यादि हैं नित्य की दृष्टि से हाथों में हाथ हुए करके इस प्रकार से नित्य इत्यादि सब गोपियों के साथ में करते सभी प्रेम में डूबी हुई हैं और अपना यह परम सौभाग्य समझ रही हैं कि आज कृष्ण हम लोगों के साथ में सबके साथ में समान रूप से नित्य करते हैं। उसमें किंतु गोपियों ने देखा कि कृष्ण मेरे ही साथ में है और किसी के साथ में नहीं वो इस प्रकार से सौभाग्य मद में मद माने मतवाली हो गए। उन्होंने ये नहीं देखा जो पास वाली गोपी के साथ में भी नित्य कर रहे हैं उन्होंने देखा कि केवल हमारे साथ ही में वो नित्य कर रहे हैं और हमारा ही सौभाग्य वर्धन कर किसी भी नहीं मिला। राधा जी ने देखा हठात कुछ दिन के बाद अरे एक गोपी के साथ अरे उसके साथ में तो देख रहे हैं फिर दूसरे पर नजर मणि तो उसके साथ भी देखा फिर तीसरे के साथ में देखा सबके साथ में अलग अलग देखा तो ये तो बड़ा
ठीक है
और भ्रष्ट और लंबा तीन सठ किसको कहते हैं छिप करके एक से प्यार होने प्रेम रहने पर भी जब उसे छिप करके उससे भी प्यार करता है तो ये सठ है और भ्रष्ट है मैंने ढीठ दूसरों के सामने भी दूसरों से मिलता है लंपट तो लंपट ही है। इस तरह से उनको देखा कि हमारे सामने भी हमारे साथ ही नित्य कर रहा है और जब उनके सामने देखा तो उनके साथ ही बड़ा ठीक है तो देख करके साथ ही साथ ये हमारा हमारे साथ भी और उनके साथ भी, कहते हैं कि मैं तुमको सबसे अधिक प्यार करता हूँ और इधर देख रहा हूँ उल्टा देख रहे हैं। एवं भगवतः कृष्ण लब्धमाना महात्मनः, ये गोपियां साधारण नहीं है, ये जो महात्मनः ऐसी है, महाभागा का महाभागा है। और कृष्ण भगवान होकर के सर्वैश्वर्यशाली होकर के ये सबके साथ में नित्य पारायण है या सबके इच्छाओं को पूर्ण करें, क्योंकि सभी चाहती हैं कि कृष्ण हमारे साथ ही नित्य करें, कृष्ण को अकेले अपने साथ में देखना चाहते। ब्रज में और द्वारका में लीलाओं में अंतर, माधुर्य और ऐश्वर्य। ऐश्वर्य लीला उसको कहते हैं जिसमें नर लीला को अतिक्रम करके जो लीलाएं वर्तमान होती हैं उनको ऐश्वर्य लीला, कोई भी मनुष्य उस काम को नहीं कर सकता है, ऐसी भगवान की लीलाएं जब प्रकटित होती हैं तो उनको कहते हैं
ऐश्वर्य।
उसमें ऐश्वर्य हो और न हो, किंतु नर लीला के अनुरूप ही जब लीलाएं होती हैं तब उसको कहते हैं। जरूरी नहीं है कि उसमें ऐश्वर्य रहे अथवा न रहे, भी सकता है ऐश्वर्य, किंतु मधुर्य के द्वारा अच्छा भी। उसमें प्रधानता ऐश्वर्य की नहीं रही तब तो वो माधुर्य, नर लीला का किसी प्रकार से
अतिक्रमण नहीं,
अतिक्रमण न हो। अब इसमें एक ही साथ में हजारों गोपियों के साथ में करोड़ों गोपियों के साथ में जो कृष्ण दिख पड़े, ये तो ऐश्वर्य हो गया। इसलिए यहां पर भगवान लिखा एवं भगवत कृष्ण कलब्धमान, कृष्ण मान, कृष्ण ने सबको मान दिया एक साथ में। ये नरलीला के रूप में ये संभव पर नहीं हो सकता था, किंतु है नरलीला, ब्रज में नरलीला ही हो, ऐश्वर्य में लीला नहीं हो। किंतु एक बात, ऐश्वर्य छोड़कर के माधुर्य जब भी होता है तो वो क्या हो जाएगा, लौकिक लीला हो करके उसमें काम आ जाएगा। इसलिए ऐश्वर्य रहना जरूरी है, किंतु वह ऐश्वर्य कभी छिप करके रहता है, कभी प्रकट होकर के रहता है, बस इतना ही नहीं। कृष्ण की समस्त लीलाओं में किसी न किसी रूप में ऐश्वर्य जरूर ऐश्वर्य, किंतु वो कभी प्रकट रूप में है कभी अप्रकट। ऐश्वर्य छिप करके कभी भी तो अपना प्रभु की सेवा करना चाहता है जैसे माधुर्य करता है, इसलिए जोग माया कृष्ण को जानने नहीं देती और उनके अज्ञात सार में ही ऐश्वर्य को प्रकाश करके कृष्ण की इच्छा पर अनुरूप वो कार्य करा देता है ऐश्वर्य। इसलिए यहाँ पर कृष्ण को पता नहीं, कृष्ण भी नहीं जानते और उनके इतने स्वरूप सब गोपियों के साथ में प्रकट हो गए, अथवा कृष्ण ने क्षिप्र गति से तेजी के साथ में आला चक्र की भांति में एक ही कृष्ण एक ही समय में सब गोपियों के पास में दिख पड़े दूसरों को, किंतु कृष्ण को एक ही।
रास में तीन प्रकार नृत्य होता है, एक ग्लिसर नृत्य, तांडव नृत्य और लास्य। ग्लिसर माने मंडली गति नृत्य, तांडव नृत्य पुरुष नृत्य और लास्य माने होते स्त्री नृत्य। तो तीन प्रकार के नृत्य में तीनों प्रकार का नृत्य है। तो वहाँ पर कहते हैं कि दो दो गोपी के बीच में दो दो गोपी छी है, दो दो गोपी के बीच में एक एक, तब ये तीन जने हो जाते हैं और एक एक गोपी के साथ में एक एक।
तो ये जो प्रकाशित हुआ ये योग माया के प्रभाव, क्योंकि भगवान है वो, किंतु कृष्ण एक ही, कृष्ण को भी पता है जैसे मैं एक ही सब गोपियों के साथ में, किंतु योग माया प्रभाव से ऐसा दिख पड़ा ये सब के साथ में, क्योंकि एक गोपी एक वैसे ही लब्ध माना महात्मा, मान लाभ किया इन गोपियों उस कृष्ण से जो भगवान है। क्या मान लाती है? तो मैं थक गई, पैर दबा दूं, या उसी नित्य में ही कौशल से झट उनके चरणों की तरफ में झुक गए, पैर छू लिया होगा, उनके पसीने बोध पूछ दिए अपने पितंबर से, वाह 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 कर रहे हैं उन्हें, जब वो कीर्तन पंचम सुर में कर रहे हैं और वो सप्तम सुर में उसने किया, वाह वाह वाह, धन्य धन्य, साधु साधु कर रहे हैं। ये सब मानव को लाभ करके और वो एकदम मद में भूख भर गए। जब अब हमारे समान और कोई नहीं और उनका ऐसा होना उचित ही है। आत्मानं मेनिरे स्त्रीणां मानिन्यो अधिकं भूः, इस पृथ्वी भर में नहीं, यहाँ पर सब जगह हमारे समान कृष्ण की कोई प्रिया नहीं है, इस प्रकार का अभिमान के अंदर में ताशां तत्सौ मदम विक्षमान प्रसमाय प्रसादाय तत्परणं सर्वं। उनका ऐसा सौभाग्य मत देख करके उन गोपियों, अरे अब तो ये राधिका जी से भी अपने को, ललिता विशाखा जी से भी ये सब अपने को ये समझ रही है, अधिक एक एक स्वतंत्र रूप में अब कृष्ण का सबसे अधिक प्रिया मैं हूं, ऐसे अभिमान में ये मतवाली हो गई, अब तो दूसरों को ये तुच्छ एकदम समझती, इसलिए किसी के साथ में ये राष्ट्र नहीं।